अगली सुबह उठते ही छवि ने अपना रूटीन पूरा किया और फिर अपने मैनेजर राहुल को बुलाया। रात को अयान ने उसे मना किया था, उसके बावजूद वो आयु के जरिए आरव को चोट पहुंचाने के बारे में सोच रही थी। छवि ब्रेकफास्ट टेबल पर थी तभी राहुल एक फाइल के साथ उनके घर पर आया। अयान हॉस्पिटल जा चुका था लेकिन रायशा छवि के साथ वहां मौजूद थी। जैसे ही छवि ने राहुल को देखा उसने रायशा से कहा, बेबी मैंने तुम्हें एक्टिंग के लिए हाँ तो कह दिया है लेकिन तुम अपनी स्टडी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करोगी। बोलते हुए उसने इशारे से राहुल को वहीं उनसे दूर रुकने को कहा। ओके मॉम, जब भी मुझे शूटिंग से फ्री टाइम मिलेगा मैं सभी क्लासेज ऑनलाइन अटेंड कर लूंगी, रायशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वेरी गुड, नाउ आई गेट टू गो, तुम कंटिन्यू करो, बोलते हुए छवि खड़ी हुई और उसने रायशा के फॉरहेड पर किस किया। रायशा को बाय बोलने के बाद छवि राहुल के साथ अपनी मीटिंग रूम में आ गई थी। वहां आते ही छवि बैठते हुए बोली, मैंने तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहा था, तुमने अपना काम किया। आपका कॉल एक घंटे पहले आया था, मुझे ज्यादा कुछ पता करने का टाइम नहीं मिला, फिर भी मैंने हॉस्पिटल से थोड़ा बहुत कलेक्ट किया था, राहुल ने जवाब दिया और फिर फाइल खोलकर छवि के सामने रख दी। छवि जल्दी से फाइल को देखने लगी। उसे देखने के बाद उसने गुस्से से उसे टेबल पर पटका और कहा, ये क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, इतना तो मैं पहले से जानती हूँ कि वो लाइफ केयर हॉस्पिटल में अयान के अंडर जूनियर न्यूरोसर्जन का काम करती है, बाकी उसकी फैमिली और आरफ का उसके साथ क्या कनेक्शन है उसके बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा है। मैंने कहा ना, एक घंटे में मुझे जितना मिला मैंने कर दिया है, बाकी हम सोशल मीडिया पर देख लेंगे, वैसे भी आजकल ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के बारे में वहां अपडेट देते रहते हैं, राहुल ने शांत लहजे में जवाब दिया और फिर अपना आईपैड ऑन किया। राहुल और छवि ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयु को सर्च कर लिया था लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। लाइफ केयर हॉस्पिटल से जुड़े ऑनलाइन डेटा में उन्हें आयु का नाम जरूर मिला था पर उसके अलावा उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला था। छवि ने गुस्से में राहुल की तरफ देखा तो उसने सफाई देते हुए कहा, मुझे क्या पता था कि ये सोशल मीडिया भी यूज नहीं करती, आजकल सब लोग वहां अपडेटेड रहते हैं। उसके नाम और इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन के चलते मैं आरफ को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगी। माहिरा और आरफ के केस में भी कुछ नहीं हुआ, मैंने सबके सामने बोल तो दिया कि दोनों फेक रिलेशनशिप का ड्रामा कर रहे हैं पर दोनों अचानक से घूमने के लिए किसी ट्रिप पर चले गए, अगर यही चलता रहा तो मेरी पोजिशन और डाउन हो जाएगी, छवि ने सिर पकड़कर कहा। इस वक्त वो काफी परेशान लग रही थी। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी मैम कि ये लड़की उनसे जुड़ी हुई है, ये एक नॉर्मल सी डॉक्टर है, अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अयान सर से ही क्यों नहीं पूछ लेती, राहुल ने सुझाव दिया, जिस पर छवि उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। छवि ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, सीरियसली राहुल तुम आज थोड़ी ना आए हो, तुम अच्छे से जानते हो मेरे और अयान के रिलेशंस कैसे हैं, मैंने उसे पूछने की कोशिश की थी तो उसने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि अगर मैंने आरव के खिलाफ कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। वन मोर थिंग, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, ये लड़की उस दिन बाथरूम में रो रही थी और आरव को भला बुरा कह रही थी, जरूर आरव ने इसका कुछ ना कुछ बिगाड़ा होगा, राहुल ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी राहुल के पास एक फोन आया। उस कॉल के बाद उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल पर क्यों 12 बज रहे हैं, छवि ने चिढ़कर पूछा। एक्चुअली हम अपने नए वेंचर के लिए जिस लैंड को काफी टाइम से लेने की कोशिश कर रहे थे उसे आरव ने 5 गुना पैसे देकर खरीद लिया है, जैसे ही राहुल ने बताया छवि के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। व्हाट, लेकिन वो जगह उसके किसी काम की नहीं थी, फिर वो, छवि बोलते हुए रुक गई, फिर वो कुछ देर के पॉज के बाद वापस बोली, सिर्फ और सिर्फ मुझे मात देने के लिए उसने ये किया है, कुछ करो राहुल, अंडरवर्ल्ड में हमारी पोजीशन डाउन हो रही है, ऊपर से बिजनेस में आरव पूरी टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, आपको अब ऑफिस पर भी थोड़ा ध्यान दे लेना चाहिए, राहुल ने धीमी आवाज में कहा। शायद तुम ठीक कह रहे हो, आरव को वीक को करने के लिए मेरे पास और भी कई तरीके हैं और उनमें से बिजनेस भी एक है, चलो ऑफिस चलते हैं, छवि ने जवाब दिया। राहुल ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वहां से वो दोनों सिंघानिया एम्पायर जाने के लिए निकल गए। वहीं मुंबई के एक वीआईपी इलाके में बहुत बड़ी सी खाली लैंड पर एक लग्जरियस ब्लैक गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में कबीर और आरफ बैठे हुए थे। आरफ ने मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ देखा और पूछा, क्या लगता है तुम्हें, अब तक तो छवि सिंघानिया को पता लग गया होगा कि जिस लैंड पर उसकी इतने दिनों से नजर थी वो हमने खरीद ली है, सोचो उसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे। व्हाट, उसने वो लैंड क्यों खरीदी, उसे तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, जरूर उसने ये सब इसीलिए किया होगा ताकि मुझे नीचे गिरा सके, कबीर छवि की नकल करते हुए बोला। फिर उसने अपने आवाज का टोन सामान्य किया और आगे कहा, उसने कुछ ऐसा ही कहा होगा। आरव ने भौहें चढ़ाकर उसकी बात पर हामी भरी। फिर उसने गाड़ी में बैठे बैठे ही एक नजर लैंड पर दौड़ाई और फिर कबीर की तरफ देखकर कहा, वैसे सच कहूं तो हमें इस जगह की जरूरत नहीं है, इसे ले तो लिया है, अब यहाँ क्या करेंगे, क्यों ना हम एक हॉस्पिटल बनाए सर, आप कहो तो मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई करूं, कबीर ने सुझाव देते हुए कहा। हॉस्पिटल, उसकी क्या जरूरत है, ऑलरेडी हमारे पास एक हॉस्पिटल है, वो भी ठीक से नहीं संभाला जा रहा तो मिस्टर कपूर उसकी केयर कर रहे हैं, नहीं मुझसे नहीं होने वाला, आरव ने तुरंत हॉस्पिटल बनाने के सुझाव को रिजेक्ट कर दिया। सोच लीजिए सर, हॉस्पिटल बनेगा तो हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, नए नए डॉक्टर्स आएंगे, जो अब जूनियर पोजीशन पर हैं वो फ्यूचर में सीनियर बन जाएंगे
और क्या पता हमें हमारी पर्सनल घर की सीईओ मिल जाए जो हॉस्पिटल संभाल ले। कबीर का सीधे सीधे इशारा आयो की तरफ था। वो बहुत आगे की सोच रहा था। कबीर के इशारे को समझते हुए आरफ के फेस पर हल्की स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। शायद कोई ब्लश कर रहा है, कबीर ने उसे परेशान करते हुए कहा। चुपचाप गाड़ी चलाओ और चलो यहाँ से, और हाँ कर देना हॉस्पिटल के लिए अप्लाई, आरफ ने जवाब दिया। उसका चेहरा अभी भी बाहर की तरफ था और चेहरे पर हल्की स्माइल थी जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा था। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे घर की तरफ लिया। वहीं आरफ आयो के बारे में सोच रहा था। मैं गलत था, तुम छवि सिंघानिया से जुड़ी हुई नहीं हो। पता नहीं क्यों तुमसे जुड़ी हर बात दिल को इतना सुकून देती है। मैंने ये पहले कभी किसी लड़की के लिए फील नहीं किया है, पर तुम पहली नज़र से अपनी सी लगती हो। तुम्हारी खुशी में खुश होना अच्छा लगता है। सोचते हुए आरफ का हाथ उसके होठों के पास लगा तो उसके मुंह से आह निकल गई। क्या हुआ सर, इज एवरीथिंग ऑल राइट, कबीर ने तुरंत पूछा। हाँ तुम ड्राइव करो, दादी को अकेले नहीं छोड़ना है, घर पहुँचना होगा, आरफ ने जवाब दिया। फिर उसने मिरर में खुद के चेहरे को देखा तो उसके नीचे के होंठ एक कोने से हल्का सूजा हुआ था। कल आयु ने उसे वहां पर पंच किया था। काफी अच्छा कर रही हो तुम, अगर मैं खुद का डिफेंस नहीं करता तो तुम तो मुझे अच्छा खासा पीट देती, लेकिन तुम्हारा जहान के फाइट क्लब में होना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें डायरेक्टली कह भी नहीं सकता कि वो जगह किस तरह की है, पर कुछ ना कुछ करके तुम्हें वहां से निकलना होगा डॉक्टर, आरफ ने अपने मन में कहा।
आरफ कबीर के साथ अपने घर पहुंच चुका था। पूरे रास्ते वो आयु के बारे में ही सोच रहा था। जब से उसके दिल से आयु के लिए गलत फहमियाँ दूर हुई थी, वो चाहकर भी आयु का ख्याल अपने दिल से नहीं निकल पा रहा था। दूसरी तरफ आयु अयान के साथ हॉस्पिटल में थी। कल रात आरफ के साथ हुई बातचीत में उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या सच में वो अनु की मौत में इन्वॉल्व था या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ अयान भी थोड़ा लॉस्ट था। छवि सिंघानिया आयु के बारे में पूछ रही थी और ये उसके लिए अच्छी खबर नहीं थी। मॉम ने आयु के बारे में पूछा है, इसका मतलब वो ज़रूर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगी। मुझे पहले ही आयु को वॉर्न कर देना चाहिए, इससे पहले कि मॉम आयु का यूज़ करके भाई को हर्ट करने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो भाई आयु को गलत समझेंगे। चीज़ें उलझने से पहले सही करनी होगी अयान, अयान ने अपने मन में कहा। वो उस वक्त सर्जरी के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था, इस वजह से उसने काफ़ी सामान नीचे गिरा दिया था। आयु उसके पास ही थी। उसने अयान को हड़बड़ाहट में देखा तो उससे पूछा, सब ठीक है ना, तुम कुछ और सोच रहे हो और हम सर्जरी के लिए जा रहे हैं, क्या तुम इस सर्जरी के लिए तैयार हो? शायद नहीं, लेकिन जानता हूँ कि मुझे खुद को प्रिपेयर कैसे करना है, अयान ने जवाब दिया। फिर उसने आयु से पूछा, बाकी प्रोसेस करने में कितना टाइम बाकी है? लगभग 20 मिनट, आयु ने जवाब दिया। हाँ 20 मिनट काफ़ी होंगे, बोलते हुए अयान ने आयु का हाथ पकड़कर कहा, मेरे केबिन में चलो, जब तक मैं तुमसे बात करके सब ठीक नहीं कर लेता मेरा मन ऐसे ही डाइवर्ट रहेगा। आयु उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले अयान उसे खींचते हुए अपने केबिन में ले जाने लगा। केबिन के अंदर आते ही आयु ने अपना हाथ उसके हाथ से अलग करके कहा, तुम परेशान लग रहे हो, कुछ सीरियस है क्या? सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। देखो मैं तुम्हें डायरेक्टली सब नहीं समझा सकता, पर जितना बताऊं, जैसे बताऊं, तुम्हें मेरी बात को समझना होगा। मेरी मॉम एक अच्छी इंसान नहीं है, शी इज़ वेरी मैनिपुलेटिव। लोगों के इमोशंस के साथ खेलकर उनका यूज़ करना और दूसरों को चोट पहुंचाने में उन्हें बहुत मज़ा आता है, अयान आयु को समझा रहा था। तभी वो उसकी बात बीच में काट कर बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी मॉम को कुछ ज़्यादा ही जज करते हो? मैंने उनसे 2 बार बात की है, ज़्यादा कुछ नहीं, पर मुझे वो ठीक ठाक सी लगी। पता नहीं तुम्हें, नहीं सिर्फ तुम्हें नहीं, आरफ को भी उनसे क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही आयु ने आरफ का नाम लिया, अयान कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ सीन घूम रहे थे जिसमें वो लगभग 2 साल का था। ये एक रेलवे स्टेशन का सीन था जहां छवि ने अयान को गोद में ले रखा था, तो वहीं दूसरे हाथ से उसने एक और बच्चे का हाथ पकड़ रखा था जो लगभग 4 साल का था, वो आरफ था। वो सब याद आते ही अयान के चेहरे पर पसीने आने लगे। उसने पानी पिया और कहा, सॉरी पर मैं ये सर्जरी नहीं कर पाऊंगा। आयु उसे रोक दी, उससे पहले अयान वहां से चला गया जबकि वो हैरानी से वहां खड़ी थी। अचानक से अयान को क्या हुआ कि वो वहां से चला गया? ये पहली बार हुआ था जब उसने किसी सर्जरी से बैकआउट किया था।